नवम स्कंद के 21वें अध्याय का 25वां श्लोक, ऐसे 23, 24 और 25 है। पर हम लोग बात करेंगे 25वां श्लोक का। सकृतवत्या सुख कन्यायाम ब्रह्म दत्तम अजिजनत योगी स रवि भाज्यम विश्वक्षेनम अर्हात् सुतम साकृतवत्याम सुख कन्यायाम ब्रह्म दत्तम योगी सगवि भाज्यायाम विश्वक्सेन मधात्सुतम् सकृद्व्याम् सुखकन्यायाम् ब्रह्मदत्तम् मदीजनात् योगी सगविभाज्ययाम् विश्वक्सेन मदधात्सुतम् गरम पानी लेते उसने नीप ने कृतव्याम कृतवी नामक पत्नी से सुख कन्यायाम जो सुख की कन्या थी ब्रह्मदत्त नामक पुत्र अजनत उत्पन्न किया योगी था सह ब्रह्मदत्त गवी गो अथवा सरस्वती नाम की भाज्यायाम अपनी पत्नी के गर्भ से विश्वक्सेन नामक अर्थात उत्पन्न किया सूतम पुत्र को सुख की पुत्री अर्थात नीप की पत्नी कृत्वी के गर्भ से ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और ब्रह्मदत्त एक महायोगी था उसकी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तात्पर्य करता न करता अति यहाँ पर जिस सुख का वर्णन है वह भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी से एक भिन्न व्यक्ति है। व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से पाया जाता है। उसमें बताया गया है कि व्यासदेव ने जावारी की पुत्री को अपनी पत्नी बनाया और दोनों ने अनेक वर्षों तक इकट्ठे तपस्या की। तब व्यासदेव की विधियत से उसे गर्भ रह गया और यह बालक अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहा। और जब पिता ने बालक से गर्भ से बाहर आने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि वह तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक उसे माया के प्रभाव से पूरी तरह रक्षण न मिले। तब व्यासदेव ने बालक को आश्वस्त किया कि वह माया से पूरी तरह मुक्त रहेगा, किंतु बालक को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि पिता अब भी अपनी पत्नी तथा बच्चों में लिप्त थे। तब व्यासदेव द्वारिका गए और भगवान को अपनी समस्या बताई। व्यासदेव की प्रार्थना पर भगवान उनकी कुटिया में आए और गर्भस्थ बालक को आश्वस्त किया कि वह माया से मुक्त रहेगा। इस पर बालक गर्भ से बाहर आया और तुरंत ही परिव्राजकाचार्य के रूप में घर से बाहर चल दिया। जब पिता व्याकुल होकर अपने साधु पुत्र सुखदेव गोस्वामी का पीछा करने लगे तो उसके साधु पुत्र ने एक दूसरा नकली सुखदेव उत्पन्न कर दिया जो बाद में गृहस्थ बना। इसलिए इस श्लोक में वर्णित सुख कन्या इसी नकली सुख की कन्या थी। मूल सुखदेव तो आजीवन ब्रह्मचारी बने रहे। दे 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 दे। अगला बहुत खराब है। आ जाएगा गर्म पानी। बंद करके रख।
अमज्ञानतिमिदन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोहरिष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति शब्दम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरूर्णवैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनिवितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता शिविशान खनिता मुकं करोति वाचां पंगुमलं गजदगिरिं जत्कृपातमहं वंदे परमानंदम श्री गुरु नरिनत जयतं सुरत पंगौर मम मंदमते गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजो श्रीराधामदनम वंचकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतितनां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्त।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे नमः विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निज विशेष शून्यवादी अस्यात देश हरे कृष्ण। तो सृष्टि राधा गिरिदारी जी के आश्रय में हम सब लोग उनके एक महान भक्त श्रील प्रभुपाद महाराज बताए हुए भक्ति रूपी महान पथ पर चल रहे हैं और हमारी ये यात्रा उन्हीं की कृपा से अर्थात श्री राधा गिरिधारी और श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से वो यात्रा 100% सफल रहेगा, क्योंकि भक्ति का कोई भी फल या थोड़ा सा किया हुआ कर्म का भक्ति रूपी धर्म में उनका कभी नाश नहीं होता है। नेहा अभिकम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते। भगवान कहते हैं कि इस भक्ति रूपी धर्म में थोड़ा सा किया हुआ आचरण या केवल इनकी शुरुआत भर की है तभी भी उसमें निष्फलता नहीं है। तो जो लोग दीक्षा शिक्षा ग्रहण करके ये ठान लिया है कि हम लोग सुनिश्चित रूप से भगवत प्राप्ति करेंगे, उनके विषय में क्या कहना। तो आप सब लोग धन्य है कि यहां करके इस प्रकार प्रति रविवार श्रीमद् भागवतम के पाठ में आप आ जाते हैं। ये बहुत ही मंगल है। हमारा कल्याण अगर कहीं से उपस्थित होता है तो केवल मात्र भगवान की इन श्रवण कीर्तन रूपी भक्ति के माध्यम से ही वो परम सेई रूपी मंगल उत्पन्न होता है। बाकी जो कुछ भी मांगलिक प्रसंग हम लोग इस संसार में, इसके अलावा जिनको मांगलिक बोलते हैं, तो वो जितना हम लोग मांगलिक समझते हैं उतना ही अमंगल करने वाला होता है। उनसे जीव का उतना ही अमंगल होता है। इस मंगलकारी मार्ग में आप सब लोग का बुरी बुरी स्वागत है और इस प्रकार उत्साह के साथ इसी प्रकार से आप उन हरिभक्ति में आगे बढ़ते रहें, यह आशीर्वाद की कामना करते हुए इन श्रवण या कीर्तन भक्ति रूप श्रीमद् भागवत अध्ययन जो प्रभुपाद महाराज के द्वारा स्थापित किया गया है, तो ऐसे भागवतम के अनुक्रम में हम लोग प्रशस्त होते हैं। सकृत्याम सुख कन्यायाम ब्रह्मदत्तम अजिजनत योगी सगरी भारी आराम सुख सिंह और हाथ सुतम सुखदेव गोस्वामी बात यहाँ चंद्र वंश की वंशावली को बता रहे हैं। ये दो महान वंश है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। उसमें चंद्र वंश अति महान गिना रहा है, जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम या साक्षात श्री कृष्ण चंद्र जिस वंश में स्वयं प्रकटित करते हैं अपने आप को, इसलिए उन चंद्र वंश की महामहिमा है। तो ये वंशावली सुखदेव गोस्वामी बात बता रहे हैं। तो इन वंशावली का क्या आवश्यकता है, एक भक्त हमें कल पूछ रहे थे कि प्रभु श्रीमद् भागवतम में वंशावली का क्या क्या इतना आवश्यक है वंशावली। खूब आवश्यक है, क्योंकि ये वंशावली में जो ये अद्भुत चरित्र है, उन महान व्यक्तित्व के जो अद्भुत चरित्र का वर्णन हुआ है, वो वर्णन सुनकर के हम लोग भी उसी प्रकार का चरित्र बनाने की चेष्टा करने लगते हैं। जीव जहां भी है अपने पुरुषार्थ मार्ग में, उनको हर तरीके से इन परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ाना ये कार्य भागवतम करते हैं। हर तरीके से सदाचार भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना सदाचार, यद्यपि भगवत भक्ति कदाचारियों में भी देखी जाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवत भक्ति स्वतंत्र है भगवान की तरह, तो इसीलिए वो कभी कभी उन असदाचारी पुरुषों में भी भगवान की भक्ति देखी जाती है। लेकिन सदाचारी भक्त जितना समाज का कल्याण कर सकता है, उतना कल्याण वो कदाचारी व्यक्ति से नहीं होता है। कदाचित वो कदाचारी व्यक्ति उन साधु संतों के आशीर्वाद से हो सकता है कि वो भगवत भक्ति प्राप्त कर ले, लेकिन दूसरों को लगाने के लिए सदाचार बहुत आवश्यक है। और सदाचार को ही दुष्ट हृदय भी ग्रहण करता है, दुष्ट से दुष्ट हृदय कंस, आप जानते हैं दसम जब उन देवकी को मारने के लिए उनका चोटी पकड़ लिया, उनको छुड़ाने के लिए लाख तर्क दिया या शास्त्र दिया, साम दाम दंड भेद नीति बताते हुए उपाय कर लिया वसुदेव जी ने, लेकिन नाकामयाब। और उन्होंने आखिरी उपाय आजमाया और वो शास्त्रोक्त नहीं था, सदाचार युक्त वचन। उन्होंने कहा कि देखो भाई किससे हैं, उनके पुत्रों से कि इसी से, बोले इससे क्या भाई, ये तो पकड़ी हुई अभी गलत काट देता हूं भाई, नहीं भाई किसके पुत्र, बोले ठीक है तो उनका पुत्र होगा मैं तुमको देता जाऊंगा। और इतना बोलते ही कंस ने छोड़ दिया छोटे को, कोई शास्त्र नहीं कुछ नहीं, शास्त्र नहीं बोले, लेकिन एक दृढ़ सदाचारी व्यक्ति बोल रहा था। कंस को भी दुष्ट को भी विश्वास था कि वसुदेव जी कभी झूठ बोलेंगे नहीं, झूठ आचरण करेंगे नहीं, किया किया कि नहीं बताओ, नहीं किया किया, कृष्ण को रात्रि में छोड़ के आ गए बोला था देने के लिए, किया कि नहीं किया। लेकिन उस टाइम देवकी को बचा दिया, देवकी को छोड़ दिया। मैं बता रहा था कि जो व्यक्ति धर्म गुरु बनना चाहते हैं या इसी प्रकार लोक नेता बनना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो सदाचार युक्त जीवन जीवे, वो कभी भी किसी और से किसी भी प्रकार का कोई भी आचरण ऐसा न करें कि जिनके कारण समाज को कुछ बताने का मौका मिल जाए, एक मौका दे दें। इसी से व्यक्ति निंदा करते हैं और निंदा से व्यक्ति नीचे आते हैं। ये कदाचार दूसरों को गिराने वाला है। कदाचित स्वयं भक्ति मार्ग से न गिरे, कदाचित साधु के आशीर्वाद से न गिरे, लेकिन दूसरे लोग तो उनको देख करके उनकी निंदा करेंगे, दूसरे लोग नीचे आएंगे और स्वयं भी वैसा व्यक्ति भी आएगा। इसीलिए बहुत आवश्यक है। और इसीलिए ये जो वंशावली बताई जा रही है, उस वंश में बड़े बड़े महापुरुष हुए या बड़े बड़े ऐसे आचरण करके, जैसे महाराज रामदेव का कथा, कितना अद्भुत आचरण, कैसा अद्भुत चरित्र। और 40 दिन तक उपवास के बाद कोई आता है और उनका उनको सब कुछ दे देना, हद हो गई है। लेकिन ऐसे ऐसे चरित्र का वर्णन है तो बहुत आवश्यक। इसमें कहीं देवता हो गए, कहीं ऋषि हो गए, ऋषि के समान या ऋषि से बढ़कर भी आचरण इस चंद्र वंश के मंत्र में बताया गया। तभी तो परीक्षित महाराज ने वहां कहा कि सुखदेव गोस्वामी पर आपने जो दोनों वंश का वर्णन किया, अति अद्भुत, अति महान चरित्र। लेकिन अभी मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं। पर ये चरित्र तो निश्चित हमारे चरित्र का निर्माण करने वाला होता है, उनसे हमारे चरित्र की रक्षा होती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम सम्यक रूप से भक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। इनको अगर विचार किया जाए उनके प्रत्येक पहलू पर, तो ये भी पहलू व्यक्ति को ऐसा नहीं मिलेगा कि इसमें ये बात फालतू लिखी गई है। कोई भी बात तो ऐसे महान ग्रंथ की मनसावली का सुखदेव गोस्वामी पर वर्णन करते हुए इन 25 श्लोक में कहते सकृतवत्याम सुख कन्यायाम, कहते हैं कि वही निप, वही मन वह निप ने कृतवती नामक सुख कन्या के गर्भ से ब्रह्मदत्त नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। अब सुखदेव के सही बात तो कन्या ही, उनको उनको तो स्त्री थी नहीं, उनकी कन्या कहां से आएगी, आएगी नहीं, उनको तो कोई कन्या नहीं, वो तो ब्रह्मचारी थे। तो इसी के ऊपर तात्पर्य शिल प्रभुपाद माने दिया है, हमारे आचार्य ने भी अच्छा सुंदर तात्पर्य लिखा है उनके ऊपर। जीव गोस्वामी पद निकाल कर दे दो। तो कहा गया इसमें शिल प्रभुपाद महाराज अपने पद पद में आचार्य को कोट करके अपने तात्पर्य को बहुत सुंदर तरीके से रचना किया है। फिर भी मैं चाहता हूं, देखिए इसमें प्रभुपाद जी लिखे हैं कि उन सुखदेव गोस्वामी पाद का विख्यात पुत्र, अत्यंत ख्यात पुत्र, वो तो ब्रह्मचारी रहे। अपने जीवन में उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि जो माता के गर्भ में से ही नित्य मुक्त जीव थे तो उनको क्या आवश्यकता है विवाह करने की। जो विवाह तो वो लोग करते हैं, कुछ बाहर से कुछ आनंद की आवश्यकता होती है, लेकिन आत्माराम जो है उनको तो कोई जरूरी नहीं है। अब तक काम जो आत्माराम मुनिगण है उनको क्या आवश्यकता, कोई भी चीज का कोई भी सुख उनको आवश्यक नहीं होता, जरूरी नहीं होता उनके लिए, तो वो क्यों विवाह करेगा। अतः श्रील प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि देखिए वो जाते टाइम उन्होंने एक छाया सुख को निर्माण किया, एक छाया रूपी परछाई रूपी एक सुख को निर्माण किया, वेद व्यास महाराज की तसल्ली के लिए अच्छा, उनके अलावा कुछ कथाएं कुछ ब्रह्म वैवत पुराण में और हरिवंश इत्यादि में अनेक कथाएं हैं, दो तीन सुख की बात सुनी जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये नया सुख का निर्माण क्यों कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। जो आचार्य श्रीमद् भागवतम का तात्पर्य लिखते हैं वो बहुत समझ करके ये सारा बात लिखते हैं। बोलते हैं तो त्रिवी सुख, हाँ जैसे यहां इस पद्मोत्तर में लिखा है या अन्य सॉरी ब्रह्म वैवर्त में लिखा है कि प्राप्त कलयुगे व्यास चक्रे यो जगत कृते महाभारत आख्यम सर्व वेदार्थ संग्रहम। बोले उन कलयुग आने पर वेद व्यास महाराज ने कलयुग आने से पहले प्राप्त का अर्थ बस अभी आने वाला था, तो द्वापर के अंत में तो इन कलयुग की जनों के लिए वेद व्यास महाराज ने उन वेदार्थ संग्रह करने के लिए भगवान का एक अवतार हुआ, जिन्होंने वेदों का संग्रह किया और उनके साथ में महाभारत इत्यादि ग्रंथ उन्होंने रचना किया। ब्रह्मचर्य परिभ्रंश से मातृ व्याख्यात उपरिस्थित इसमें लिखते जी गोसाई बात कि उसी प्रकार वो ब्रह्मचारी जीवन में ये सब लिख दिया था। कौन? श्री वेद व्यास महाराज अपने ब्रह्मचारी जीवन में ये सब निवृत्त हो गए थे सब लिख करके लेकिन कहते हैं कि ब्रह्मचर्य परिभ्रंश से मातृ वाक्यात ये तो शास्त्र का बात है। कहते उनका ब्रह्मचर्य भंग हुआ। अब इसमें कारण नहीं लिखा गया है, मातृ वाक्यात समझे या क्या समझे। अच्छा, इसके लिए आगे कहते स्वयं पितृ ऋणालम द्वीपवत सोढुम सक्षम। कहते हैं कि वो सक्षम थे, भगवान का अवतार थे, वो बिना स्त्री के भी मां का वाक्य पूर्ण कर सकते थे ना, उनका वाक्य पूर्ण कर सकते थे, वो तो सक्षम थे। कहते कि ठीक, लेकिन कहते विचिंत मनसा चक्रे बाजम जाबालिक कन्याम। देखो यहां पर ये एक दूसरी कथा है, एक सुख की कथा हम लोग सुनते हैं। वो सुखदेव गोसाई पाद जो पूर्व जन्म में राधा रानी के तोता था और वो तोता हमेशा कृष्ण कृष्ण करके, लेकिन ये देखिए यहां जो कथा आती है उनमें भिन्नता देखिए। वो जाबालिक की कन्या जब वो वन में निवास कर रहे थे वेद व्यास महाराज तो माता के कहने पर वो जाबालिक की कन्या जिनका नाम था बिट्टिका, वेद व्यास महाराज की पत्नी का नाम क्या था? कृतिका था ना, ये बिट्टिका नाम है। साफ है कि ये दूसरी कन्या थी और ब्रह्मचारी वृत्त भ्रंशित होकर के उन्होंने इन जाबालिक की कन्या से एक पुत्र उत्पन्न किया। ये भी सुखदेव गोसाई पाद है, लेकिन सुखदेव गोसाई पाद का एक कथा भिन्न रूप से हम लोग जानते हैं और उनकी चर्चा करते आ रहे हैं। तो ये भिट्टी का नामक जो ये डबल की कन्या थी, बोले दीपवत अरे डो तस्मे सो अपि वैखान बहुत छोटा वैखन सी वैसे ही होता, ठीक वैसे मेरे में होता वैसे ही होता है। अब ठीक है, लेकिन कहते हैं कि वो भी वैखानस आश्रमी थी, अश्विनी थी, मृत्तिका, एकदम तपस्विनी थी वेदव्यास महाराज, और उन्होंने एक साथ में खूब तपस्या किया। इधर माता की आज्ञा थी कुछ है? और उन वित्तिका के साथ वेदव्यास महाराज का तपस्या में लग गए। और चक्रे यथा सह तप ऋतु गामी तदिच्छया, और जब वो तपस्या बहुत कर लिया उनके बाद में वो ऋतिमती हुई जब वित्तिका, तो उस समय कहते हैं कि प्रथम गर्भो अभवत तस्मात तस्याम च बवृद्धे। उन्होंने अपना विधि आधान किया, ऐसा लगता है वो गर्भ धारण करवाया वित्तिका को। और यही है सुखदेव है, वो 12 साल इसी के गर्भ में रहे, इसमें नहीं। देखो साफ लिखा है, मैं तो जो पढ़ रहा हूं पाठ, वो तो ब्रह्म वैदपुरंत जी को सही बात लिखते हैं, जगदी ठाकुर उनको बोल रहे हैं कि ये ठीक है, और श्रील प्रभुपाद महाराज उनके ऊपर बिल्कुल मोहर मार दिया, यही ठीक है। और हम लोग एक कथा जो जानते हैं उसका अर्थ ये है कि ये कल्प भेद से ऐसा अनेक कथाएं, क्योंकि पुराण जो है वो पुराण तो चलता आ रहा है, अनेक प्रकार की घटनाओं का वर्णन इसमें मिलता है, तो कल्प भेद से ये कथा समझना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, वेद व्यास महाराज होते हैं सैन्य, ये परिपाटी है, और चैतन्य बाद में आते हैं उन्हीं 28वीं चतुर्युगी के लगभग अंत में। तो कल्प भेद से, कल्प कहते ब्रह्मा के एक दिन को, एक दिन में एक बार आते हैं, कल्प भेद के कारण ये सब कथाएं संजो करके रखे। तो वो कथा ऐसा नहीं है कि वो गलत है, जो हम लोग जानते हैं जिनकी चर्चा करते हैं वो कथा इनके सामने गलत हो जाएगी, ये बात नहीं है। पर कल्प भेद से नाना प्रकार की उन कथाएं लिखी गई है। कहते हैं कि उनके बाद में कला भी ही शुक्ल पक्ष से गए हिमद्युति इवद्विज, कहते हैं उसी प्रकार उन शुक्ल पक्ष की कला में जैसे चंद्रमा बढ़ता है उसी प्रकार वो बढ़ने लगा बालक है? और वो द्युतिर इवद्विज हिम है? जो उनका कलर था एकदम व्हाइट कलर लिखते हैं, हिम जैसा कलर था, बर्फ जैसा, जैसे आर पार दिखाई होने वाला नहीं, एक बर्फ होता है तो आर पार दिखाई पड़ता है, ऐसा नहीं, वो थोड़ा बताता है ना वैसा हिम नहीं ना, वो ठंडी कोहरा होता है ना उनको हिम बोलते हैं, तो घना कोहरा होता है इसी प्रकार का कलर उनका था। और द्वादश अवधानी जाता नहीं न प्रस्तुत इसमें, वो 12 साल उन वित्तिका के गर्भ में रहा, बोलते हम बाहर नहीं निकलेंगे। इनके लिए एक कथा है, अब तो बाद में तो हम तो उपक्रम को जानते हैं, खाली इतना हमको मालूम नहीं था। अब इसकी स्पष्टता तो उपाध्याय नहीं किया, इसीलिए मैं ये थोड़ा बहुत इसमें लेना चाहता था, बाकी जीत तो है सब कुछ। एक जो दूसरी कथा होती है तो आवश्यक होता है कि जो इसमें लिखा गया है वो लोग जाने, कंफ्यूज ना हो, कहीं कोई पूछ लिया कि सुखदेव गोस्वामी पाद ब्रह्मचारी थे तो सुख कन्यायाम वो किस सुख की कन्या थी, अब बताइए भक्त लोग क्या जवाब देंगे, अरे आ यार सुखदेव तो ब्रह्मचारी थे। अब बोले प्रभुपाद जी लिखे, बोले प्रभुपाद जी का हम नहीं मानेंगे, तो मान लीजिए कि वो लोग इतने भक्त नहीं है, अब प्रभुपाद जी लिखते सब कुछ होएगा, मान लीजिए कोई कहे तब उनको शास्त्र देना पड़ेगा आपको देगा। देखिए अब दोनों वेद व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी पाद उन ब्रह्मचारी के लिए एक कथा है। अब इधर से हो या उस कल्प से या किसी कल्प का एक कथा हो, जो भी हो, यद्यपि जावाली किसी में हुए, ये भी एक अचरज की बात है कि जावाली की इत्यादि ऋषि मुनिगण प्रत्येक युग में आते हैं। आप लोग जानते हैं यही जावालिक ने तपस्या करके वो गोपी वृंद में उनका नाम गिना जाता है। यही जावालिक एक गोपी बने थे, इतनी कठोर तपस्या किया उन्होंने युग युग पर्यंत। ये शाश्वत ऋषि मुनिगण जावालिक इत्यादि, तो उन्होंने फिर गोपी का शरीर प्राप्त किया था यही जावालिक ने। उनकी कन्या से यहां गर्भ उत्पत्ति का बात हो रहा है, नीप के द्वारा गर्भ धारण कराया गया, उनका एक बालक ब्रह्मदत्त हुआ, एक कथा। लेकिन यहां उपक्रम से हमें जो समझने लायक बात है ये यहां श्रील प्रभुपाद महाराज लिखते हैं। अच्छा, अभी एक बात ये उठाया जाए कि देखिए सुखदेव गोस्वामी पाद को तो फुर्सत ही नहीं था, इसमें एक दोबारा निकालना पड़ेगा। अब मुझे कष्ट नहीं, तुम बैठा है तो मैं तुमसे ही निकालूंगा ना। मैं बताता हूं एक व्याख्या निकालना तो ले लो। देखो जब स्तुति करते हैं शुद्ध गोस्वामी पाद अपने गुरु महाराज की, यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, वो कहते हैं उन सुखदेव गोस्वामी पाद का क्या कहना कि जिनका एक भी संस्कार नहीं हुआ था, एक भी संस्कार लिए बगैर अनुव्रज जो चल दिए थे, कहां न संन्यास लेकर के अपने घर को त्याग के द्वैपायनो विरह का तरह, और वेदव्यास महाराज विरह से कातर होकर आजुवा पुत्र वो पुकारने लगे, रे पुत्र पुत्र तैर तैर तिस्त तिस्त, वो जरा तैर जाओ तैर जाओ। अब वो इतने तन्मय थे, इतने तन्मय थे तो वो कहां कन्या उत्पन्न करने के लिए जाएगा। देखो एक बात ये भी है, यहां साफ लिखा है, श्लोक साफ बताता है कि पुत्रेति तिष्ठ तिष्ठ, रुक रुक जरा रुक तैर, मेरा बात सुन, मैं क्या कहना चाहता हूं। वेदव्यास महाराज उनके पीछे थे तो बोलते तनमय तया तम सर्वभूत हृदयम, जो प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान है, उन भगवान में जिनका मन तल्लीन था, सुखदेव गोस्वामी पाद उन महामुनि, तो मुनि मुनि मानम न तो उन मुनियों के भी गुरु जिनका हृदय सदैव परमात्मा में स्थिर रहता है, ऐसे मुनियों के भी ये जो गुरु है सुखदेव गोस्वामी पाद, वो तो क्यों रुकेंगे। अच्छा, और एक बात है, एक बात और भी आती है, एक तो उनको एक, उनकी बात को सराहना करने के लिए सौनक जी जब बोलना चालू किया तो चतुर्थ इसकी व्याख्या निकल चुके थे ठाकुर, ये चौथे अध्याय प्रथम 1-4-5 देखो, इसमें ये कहते हैं कि दृष्ट्वा अनुयांतम ऋषिम आत्मजम अपि नग्नम देव्यो दीय परिदधुर न सुत सचित्रम तद विक्त पृष्ठति मुनो जगत उस्तवास्ति जगत उस्तवास्ति स्त्री पुंबिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। साफ इसमें सौनक जी लिख रहे हैं। सौनक जी क्या बता रहे हैं, तो देखो जब सुखदेव गोस्वामी पास जा रहे थे, कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी, कोई हृदय में स्नान कर रही थी, सरोवर में स्नान कर रही थी, वो बगल से गुजरे तो उनका पुत्र जाते हुए उनके पीछे पीछे लगे हुए पुत्र की तिष्ट तिष्ट करते हुए वेदव्यास महाराज जा रहे थे, और जा रहे थे जब वेदव्यास महाराज, उनका पुत्र नग्न था, उनको देखकर पे थोड़ी सी भी लज्जा उन अप्सराओं को नहीं हुई, थोड़ी सी भी, जैसे हवा है, जैसे हवा से कोई लज्जित नहीं होता है, उसी प्रकार उस स्त्रियों ने लज्जा नहीं किया, लेकिन वेदव्यास महाराज जब आए उन्होंने अपना अपना कपड़ा पहन लिया। वेदव्यास महाराज को जिज्ञासा हुई, कहो मेरा पुत्र युवक, मैं बूढ़ा और मेरा पुत्र युवक और वो नग्न, मैं तो कपड़ा पहना हुआ हूं, वो नग्न था लेकिन तथापि परिदृत न सुतस्य चित्र, उनसे ये आश्चर्यचकित होकर के पूछ रहे हैं कि आप लोग ने वस्त्र नहीं पहना, उनको देख करके वो नग्न था और मैं कपड़ा पहना, कपड़ा पहने हुए व्यक्ति को देख करके आप लोग कपड़ा पहन रहे, वो नग्न था और वो युवक था। अच्छा, तद विक्षिप्त स्त्री मुनो, इसलिए वो मुनि ने पूछा तो वो लोग ने उत्तर दिया, तो क्या उत्तर दिया, स्त्री कुंभिता न तो सुतस्य विवक्त दृष्टि, बोले आप में स्त्री और पुरुष का भेद आप ही कर रहा है लेकिन आपके पुत्र की बुद्धि स्त्री और पुरुष को नहीं समझ रही थी, उनको नहीं समझ रही थी, बल्बाचारी की टीका निकल इसी बल्बाचारी के। तो देखिए अब इसी से आप सोचिए कि वो छाया सुख कैसे निर्मित कर दिया। प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये भी बात है कि प्रभुपाद जी इस बात को लिख रहे हैं। अच्छा, दूसरे आचार्य का बात मैंने आपको बताया, उन्होंने नहीं लिखा, उन्हें वित्तिका का पुत्र के रूप में वर्णन किया है, श्री प्रभुपाद महाराज इसको लिखे। आइए अभी जाते हैं हम लोग इसके तात्पर्य में, इसका जो तात्पर्य आचार्य के द्वारा दिया जा रहा है, अद्भुत तात्पर्य दिया है इसमें। कहा गया है कि किंच सर्वदा असंप्रज्ञात समाधिस्थ बहिर्संवेदन रहित इति वक्तुम उपाख्यानम आह दस्या अनुयाम इति। ये जो श्लोक कहा जा रहा है सोनक जी के द्वारा, वो किसकी दृष्टि करता है, अर्थात किसकी चर्चा करता है, ये सुखदेव को स्वयंपात का जो विविक्त स्थिति था, उन विविक्त स्थिति का वर्णन करते हैं, उनका चित्त असंप्रज्ञात समाधि में लगा हुआ था, बहिर कोई ज्ञान ही नहीं, केवल अपने आत्मा में जिनका चित्त लगा हुआ था। अच्छा, एक प्रश्न यह भी उठेगा कि वो थे राधा रानी का तोता और कृष्ण में जिनका मन था, ब्रह्म भूत कैसे हो गए, वापस कैसे लौटे, ये तो वापस लौटना होता है ना, इससे कित करने वाला बात है ऐसा बात। अरे कैसे, ये तो देखा जाता है कि ब्रह्मभूत अवस्था में जो व्यक्ति है वो भक्ति का अनुगामी या अनुसरण करने लगता है क्योंकि उसमें ज्यादा रस है, लेकिन पहले रस ले चुका है। देखिए उनके लिए असंप्रज्ञात समाधि में जिनका चित्त स्थिर था, और आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा अति उरुकमे, उस श्लोक में भी ये देखा जाता है, सुखदेव गोस्वामी पाद अपने आप में उस श्लोक बोल रहे थे। हाँ, सुखदेव गोस्वामी पाद के द्वारा उच्च ना, आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा अति उरुकमे, शुद्ध गोस्वामी पाद बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद के लिए बोल रहे हैं। कैसा आत्मा मुनिगण, आत्माराम का अर्थ होता है आप जानते हैं, ब्रह्मवित व्यक्ति, वो भी बोल रहे ब्रह्मवित व्यक्ति, क्या समाधान है, देखो समाधान क्या, अभी समाधान इसमें मिलता है। ये टीकाओं के द्वारा ये सब कुछ समाधान मिलता है, उन टीकाओं को हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे तो तुरंत समाधान मिलता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, तो कहते हैं वो ब्रह्मभूत अवस्था की उनकी कैसी स्थिति थी, उनके लिए ये विचार रखा जा रहा है कि उन स्त्रियों ने कपड़ा नहीं पहना। वो कहते कि अस्ति एवं कथा कश्चित सरोवरे नग्न अप्सरस नाति, नग्न अप्सरा लोग स्नान करे थी कोई सरोवर में, वहां से गुजरे, तत नग्न सुकम पुरुषम अनुयातम व्यासम दृष्टवा वस्त्राणि पद, वो नग्न सुत को देख करके व्यास ने, वेद व्यास भाग को देख करके, तो व्यास کپڑا پہنا اب سندے ہو جات. اسی لیے اس سندے میں کسم مام ودم اور لگنم دشپا وستانی پریدتی. اچھا ایک بات یہاں یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ کیا ود ویاس مہاراج اتنا نمن ہے؟ جن کو چیتن چرتامرت میں ابھرانت ویکتتو کے روپ میں چیتن دیو بتاتے ہیں, سارو بھٹاچاریہ کے سمواد میں چیتن چرتامرت میں بتایا گیا ہے کہ وید بھرانت بول کر کے مایاوادی لوگ رچنا کر, اس کا ارتھ چیتن مہاپربھو ابھرانت ویکتتو رکھ رہے ہیں وید ویاس مہاراج کو, اس میں کبھی بھرانتی نہیں ہو سکتی ہے وید ویاس مہاراج. تو یہ سب اس کو کیسے سمجھا جائے؟ بہت سندر طریقے سے اس شلوک سے مجھے ان پر سے مجھے یہ جو میں سمجھا ان کو بتانے جا رہا. کبھی کبھی کوئی پرشن اٹھے تو بھکت لوگ بنا اٹکے ان کا اتر دے سکتے ہیں خط سے, ان ساری بات کا اتر ان آچاریوں کی ٹیکا میں مل جاتا ہے. کوئی نہ کوئی آچاریہ ایک آدھ بات کو لکھ دی ہے, کوئی ایک بات کو لکھ دی, کوئی دوسری بات کو لکھتے ہیں, جن کو جو دھیان میں آتا ہے ان کے اوپر ہائی لائٹ کرتے ہیں, اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اس وشے کو. تو وہ کہتے ہیں یہاں پر کہ سواستی سی کمبیدا نہ تو ست ستے تھی یدپی سابدم جانم دد ویاس نس چکتم سوروپ جانم چ تتھاپی. وہی آچاریہ لکھتے ہیں دیکھو ان کے سابدک جان نس چکتسا جن کو ٹھیک کرنا ضروری نہیں ہے, چکتسا کا ارتھ ٹھیک کرنا نشچکتسا, جن کا سابدک جان نشچکت تھا اور جن کی ستھتی برہم میں کہتے چکت اور سوروپ جانم چ اور اپنے سوروپ جان کو بھی وہ برابر سمجھنے والا پروش ہے ود ویاس, ان دونوں ان کے پاس ہیں. سابدے پرے چ نشنام ود ویاس مہاراج اور ان کے انوسار ہم لوگ گرو جنوں کو بولتے ہیں سابدے پرچے نشنام ایسا ہی گرو ہونا چاہیے. برہمنی اور پر برہمنی ان دونوں میں نشنام پر برہم کا انوبھو اور سبد برہم وید کا انوبھو تاکہ وہ شیشیہ کو اتر دے سکے, وہ نشنام تھے. ان دونوں میں نشنام ویکتی گرو بن سکتا ہے. اب دیکھیے یہاں یہ لکھتے ہیں کہ نروچکتم ان کے شبدوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں, ان کے برہم جان کو بھی کوئی شنکا کو سیان نہیں ہے, وہ ٹھیک ہی ہے اپنی استھتی میں ہے, کہہ دیا. اچھا تتھاپی بہیر سمویدنم استی, پھر بھی ان کی باہیہ سمویدنا ہے, سکھدیو گوسوامی پاد کی وہ سمیا نہیں ہے. ادھکاریت وہ ادھکاری ہے یا برہمچاری ہے؟ ہم لوگ کیا بولتے ہیں گرہستھ کو ادھکاری نام دیتے ہیں, ادھکاری بولتے ہیں ہم کو داس ادھکاری, لیکن برہمچاری کو ادھکاری نہیں بولتے ہیں, برہمچاری ادھکاری ادھکاریت وہ ایک گرہستھ ہے. وہ ایک گرہست ہونے کے ناطے وہ دیویا نے سوچا کہ ود ویاس مہاراج استری پروش کا بھید سمجھ رہے ہیں اور آجیون برہمچری جنہوں نے پالن کیا تھا یا گربھ سے ابھی اتپن ہوا تھا ترنت پرکٹت ہو کر کے چل دیا تھا, جو مایا کو جانتے ہی نہیں تھے, اس میں کوئی بھید تھا ہی نہیں. اس کو اور بھی اس کا ویوچنا کرتے ہیں آگے, ان کو سپشٹ کرنے کے لیے اور بھی باتیں کرتے ہیں. بولے پتر ستو نتیہ آرودھ سماجی تواد نہ بہیر سمویدنم استی, جس پرکار کا ادھیکاری کا سمویدنا ہوتا ہے ایک گرہستھی کا کچھ سمویدنا ہوتا ہے, ان کو ممتا اتیادی رہتا ہے, اس کا ارتھ یہ نہیں ہو جاتا ہے وہ مایا میں, اس کا ارتھ یہ نہیں ہو جاتا ہے کہ وہ ویکتی مایا میں. پتر کی قدرت थोड़ा इच्छा रह जाती है, कुछ हो जाता है, इसी में लिखा है वेदव्यास महाराज के लिए सारी बातें की चर्चा बहुत सुंदर तरीके से की। इसलिए मैं सोचा कि गृहस्थों में भी ये सोचने लायक विचारणीय बात, यद्यपि एक प्रवचन और हो सकता है इसी से, लेकिन हम दूसरी ओर जाना नहीं चाहते, इसी अनुक्रम में हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें कहते हैं अनित्य आरूढ समाधित्वात् न बहिर् संवेदनम् अस्ति। बाह्य संवेदन थोड़ा सा भी नहीं था, जगत का अभिनिवेश ये मेरा है ये तेरा है, कोई अभिनिवेश उसमें नहीं था। वेदव्यास महाराज ने यही भले ही वो पुत्र की ममता उनको भागवत सिखाने के लिए है, या अगर जो पुत्र पिता को बहिर्मुख करने वाला होता है और उसमें कोई पिता आ सकते हो, उनको धृतराष्ट्र कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भक्त होते हुए बोले धृतराष्ट्र जैसा आसन है आपका बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त पुत्र है उसमें अगर कोई पिता आ सकते हैं, उनकी आसक्ति मानी नहीं जाएगी। क्यों? इसीलिए वो भक्त है, स्वाभाविक भक्त में आ सकती है। देखिए साफ इन सारी बातों को एक उभर करके साफ हो रही बातें जारी तदाह विविक्त दृष्टि, इसलिए कहते हैं कि वो विविक्त दृष्टि थे। अच्छा विभक्ता क्या, तो अनात्म स्पर्श रहिता दृष्टि दृष्टि। विविक्त दृष्टि क्या है? बोले अनात्म वस्तु, जो आत्मा के अलावा जो कुछ वस्तु को माइक वस्तु को जानते ही नहीं, वो विविक्त अवस्था है, उनकी विभक्त अवस्था थी, विविक्त अवस्था थी। विविक्त माने अकेला, अकेला का अर्थ वो अपने अलावा दूसरे शरीर को भी नहीं जानते, दूसरे वस्तु शरीर है। विभक्त इसको बोलते हैं, ये तो पारमार्थिक रूप में विभक्ति है, एक विभक्ति जो लोग उन एकांत को ज्यादा पसंद करते हैं उनको विभक्ति व्यक्ति कहा जाता है, एकांत जिनको ज्यादा पसंद है। समाज में समूह में या इतना ख्याति का उनका कामना ही, ख्याति का कामना जिन्होंने सदंतर छोड़ दिया वो विभक्त रहता है, या उनके लिए विभक्त रहता है जो ख्याति का कामना छोड़ना है, क्योंकि बहुत लोग जहां इकट्ठा होते हैं वहां ख्याति स्वाभाविक होता है, और उनके पास ऐसा कुछ गुण है जिस गुण से वो ख्यात होना नहीं चाहता है। ये बहुत सुंदर अवस्था है, ये जीव की बहुत सुंदर अवस्था में है, उनको विविक्त बोलते हैं, एकांत सेवी, ज्यादातर एकांत भक्तों का संग भी करते हैं, लेकिन जहां जरूरत है वहां एकांत हो जाते हैं, यहां हमारा जरूरत नहीं है, बोलना जरूरी नहीं है, बोलने से ख्याति बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शिक्षा, बहुत बहुत शिक्षा मिलती है श्रीमद् भागवतम से, और उसमें भी आचार्य जब टिप्पणी लिखते हैं तो उन टिप्पणी से अनेक शिक्षा वैष्णवों को लेने लायक शिक्षा है, अनेक शिक्षा है। ठीक, ये जो विविक्त है वो तो आत्मा के रूप में विविक्त है, दूसरा वस्तु क्या है? अकेलापन से दूसरा वस्तु है जीव के लिए, आत्मा के लिए शरीर। वो शरीर को शरीर मानते ही नहीं है, वो सपने वाला शरीर जैसा होता है, और जागृत होने पर जो सपनों वाला शरीर हमको याद रहता है, नहीं हम लोग जागते तत्काल पांच मिनट के लिए अभिनिवेश होता है वो सापनिक शरीर, आहा राजा था अभी, वो कितना अच्छा था, ये सत्य हो जाता था तो अभिनिवेश है उस राजा के शरीर में, या भोग कितना मैं भोग भोग रहा था तो अभिनिविष्ट है अभी भी जागने पर, ठीक वैसा। लेकिन व्यक्ति जागने पर समझता अरे ये तो झूठा था, ठीक उसी प्रकार एक विविक्त व्यक्ति जो आत्म व्यक्ति है इसी प्रकार संसार के संबंध को समझते हैं, वो विविक्त है बिल्कुल। जो संसार का संबंध उनके लिए वो अभिनिवेश है ही नहीं कहीं, कहने का अर्थ शरीर का भी अभिनिवेश था नहीं, लेकिन वेदव्यास महाराज को शरीर का अभिनिवेश था। वो एक ऐसे पुरुष के रूप में भगवत कार्य कर रहे थे या भगवान के अंश के रूप में उनको प्रकटित किया गया था, उनके उनको अभिनिविष्ट थे, अपने पुत्र को वो भागवतम सिखाना चाहते थे, तिष्ट तिष्ट पुत्र जो बोल रहे थे, रुको रुको देखो, वो अपने लिए नहीं कि अपनी सेवा में बूढ़ा हो जाएगा तो सेवा करेगा, चला जाए, ऐसा बात नहीं है कि बूढ़ा होने के बाद कौन सेवा करेगा, इसीलिए पुत्र का पालन नहीं। लेकिन ये ब्रह्मचारी इन दोनों में केवल मात्र इतना अंतर है, इसीलिए वो लेडीज लोग ने क्या बताया, आप स्त्री में आ सकते हैं बात नहीं कहा, आप में स्त्री पुरुष का भेद है, भेद मात्र करती थी उनकी बुद्धि, ये स्त्री है और ये पुरुष है, लेकिन अधिकारी बुद्धि था, अधिकारी बात अपना अधिकार से विपरीत आचरण एक महान भक्त कभी नहीं करते हैं। वो उतना ही आचरण कर अपने आचरण के अनुसार ही है? तो वो लोग जो जीते हैं जिस प्रकार भक्ति को जिस प्रकार ग्रहण करते हैं, जैसी ग्रहण करते हैं वैसी ही वो लोग रखते हैं, अतिरिक्त या उससे ज्यादा बताने का चेष्टा नहीं करते और न करना चाहिए, भक्ति का अभिलाषी व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए, इसी से परमार्थ च्युत हो जाएगा। और इतर जो पौधे भक्ति के साथ बढ़ते हैं, सवर्ण कीर्तन जल कड़े सिंचन, हम लोग जो सिंचन कर रहे हैं तो वो जो पौधा या वो जो पतवार खर पतवार बढ़ जाता है, भक्ति से भक्ति पौधे से बड़ा हो जाएगा, भक्ति का पौधा छोटा रहेगा। और पद प्रतिष्ठा पूजा इत्यादि वो बड़ा हो जाएगा। और इसी से कई अधपतन दिखाता है, कई भक्तों का अधपतन, इसीलिए जब भक्ति सीखते हैं प्रारंभ करते हैं तभी से सब सदाचार भी प्रारंभ हो जाना चाहिए, सभी सदाचार, या जब से शिक्षा मिली तभी से सदाचार का आचरण कर लेना चाहिए। कोई व्यक्ति दो आदमी बोल दिया कि बड़े भगत है, इसी से हम लोग को यह सोचने नहीं लगना चाहिए हाँ मैं भगत हो गया, क्या बोला अरे बाप भागवत हम जानते हैं तो मैं भागवत का जानकार हो गया, ये बात नहीं है। हम जो कुछ भी पाठ करते हैं वो आचार्यों का अनुसरण मात्र करते हैं, आचार्यों ने जो बोला है वो बोलते हैं, हमारा निर्मित तो कुछ नहीं है इसमें, न तो हमारा बुद्धि चला है। एक दिन एक व्यक्ति वृंदावन में बहुत ख्यात व्यक्ति है, बहुत सुंदर प्रवचन जानते हैं, व्यक्ति हमको बोले कि राम भद्राचार्य जी का कथा बहुत अच्छा है, अब कथा में चलिए। मैं बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा, राम भद्राचार्य की कथा में मैं नहीं, वो अंध है लेकिन श्रीमद भागवतम पाठ इतना सुंदर करते हैं और टीकाओं को इतना बढ़िया प्रस्तुत करते हैं आचार्यों की टीकाओं को, जबकि अंधे हैं, लेकिन श्रुति इतना पावरफुल उनके पास भगवान ने दी। भगवान एक प्लस पॉइंट देते हैं ना, एक आध प्लस पॉइंट रख देते हैं, जिनके पास एक इंद्रिय नहीं उनको डबल एक चीज डबल टिबल दे देते हैं ये लोग। तदाम भद्राचार्य बिल्कुल अंधे हैं, जो जानते हैं वो लोग को मालूम है। तो प्रभु जा रहे थे, हमको बोले आज से पांच साल पूर्व का बात, हमको बोले भद्राचार्य जी का प्रवचन, प्रभु जी चलिए आप। मैं बोला मेरे पास समय नहीं है और मैं नहीं जाऊंगा, मैं सीधा बोला मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाते, इतना सुंदर प्रवचन इत्यादि। मैं बोला होगा चाहिए आप सुनिए। तीन दिन के बाद में वही भक्त मेरे पास आए, प्रभु जी ऐसे लोगों को नहीं सहन करना चाहिए। मैं बोला क्या हो गया, क्या کیا ہوا؟ میں جاننے کے لیے بولا کہ کیا ہو گیا. بولتے وہ بھی بولتے میں سناتن کی ٹیکا کو کیوں پڑھوں, میں اپنا ٹیکا نرمان کروں گا, میں بھی ایک ٹیکا لکھ سکتا ہوں بھاگوتم کے اوپر. دیکھیے بیماری دیکھیے, یہ پرتشٹھا بڑ بڑے لوگوں کو نہیں چھوڑتی. یدپی وہ بہت اچھے بھکت ہیں ایسا سنا ہے, ان کی سادھنا ان کا سب کچھ بہت اچھا ہے. کہ جی وشیانتر ہو رہا ہے, میں کہہ رہا تھا وبکتا ابھیلاشا نہیں کرنا چاہیے, ویکتی کو وبکتا سیکھنا چاہیے. جب ضرورت نہیں ہے تو ان کے بعد میں وبکت رہے. اگر ہم وبکت نہیں رہ کر کے ان کے ساتھ رہیں گے بہت دوش ان لوگ کام میں آ جائے گا. جگت تو دوشت ہے لیکن جو بھاگوتم کا سندر پاٹھ جانتے ہیں اس ویکتی کو سب سے پہلے اپنی بھکتی کے لیے ایک باؤنڈری بنا لینا چاہیے. پروچن ختم, سمبند ختم, ستا سے ہرے کرشن. اور اوپر کے بھکتوں کا سنگتی میں چلا جانا چاہیے, اس کو وبکتا بولتے ہیں. جہاں ان کو بھی ڈانٹنے والے لوگ ہیں وہاں لوگ رہنا چاہتے ہیں, وہ وبکت ویکتی ہے. بھکتی کی یہی وبکتا ہے. جسی سے ان وشنوں کی ڈانٹ پھٹکار سے ہمارا چت سوستھ رہے گا وہ ٹھیک رہے گا. تو بھکتوں کے لیے وبکتا کا ارتھ ہے اتروتر اپنے سے اوپر بھکتوں کی سنگتی, یہ وبکتا ہے. وبکت من بدلے کا انت میں چلا گیا ابھی بیٹھ کر کے 64 نہیں 200,000 نام جب کریں گے ہو گیا, اور کیا, اور کچھ نہیں ہو گیا ہے. کتنا لاکھ کرنے سے بھی پکڑے گی کہیں سے بھی نہیں ہے. کیٹ آئیے ہم آگے جاتے ہیں. تو ایسے وہ آپ سمجھے نا ادھیکاری اور برہمچاری کا بھی وکتا. تو کہتے ہیں اناتم سپرش رہتا دستی, جیسے جن کی دستی آتم وستو کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتی تھی اپنے شریر کو دوسرے کے شریر کو, اسی لیے ان استریوں نے کپڑا, کیونکہ پرتیک جگہ وہ آتم درشن کر رہے تھے. جبکہ ود ویاس مہاراج ایک گرنتھ لکھنے والے ویکتی تھے, وہ یہ بادھ تھے اسی میں اتنا انتر کرنے میں استری اور ایک پروش. تو اس میں کوئی دوش نہیں دیکھنا چاہیے کہ ود ویاس مہاراج میں دوش, جہاں تک ہو سکتا ہے ان کو نورت کرتے ہوئے چلنا چاہیے, اسی لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں. دوش درشن نہیں کرنا چاہیے. اچھا کہتے ہیں یہ اشت گنا نام بھگوت آپ وبکتا کہتے ایوم اشت گنا نام بھگوت کتھا بادھ کا نام ودیہ مانتا کتھم کتھا پروچن پروچن. اب ایک دوسرے پرشن اٹھا رہے بولے ٹھیک ہے, اتنے وبکت تھے کہ وہ آتم درشن کے علاوہ کوئی درشن ہی نہیں کر رہے تھے, تو پھر ان اشت گنا نام وبیدا گنا جو کتھا ہے اس کی چرچا کیسے کی ہے اپنے سے. بس ایک تو وہ بھگوان کی چرچا ہے, بھاگوت میں جو بھی لکھا ہے وہ بھگوت چرچا کو لکھا گیا ہے, لیکن ان کے علاوہ راجا مہاراجوں کا ورنن, ان کی ونشاولی, اس کا کیا, اس کا کیا ان کے لیے بتا رہے. وہ کہتے ہیں کہ یدپی تب راجک دھرم کرنا اور کٹ وت پریتین مہین اتی, جو لوگ یدپی وہ پریبراجک دھرم والے تھے سوابھاوک, یہاں یہ معلوم پڑتا ہے کہ وہ جو رادھا رانی کے پیروں کی جو کتھا ہے, کیونکہ وہ پورو جنم میں ان کتھا کا آسوادن کیا تھا ہری کتھا کا, ایک جنم کا بات نہیں تھا سکھدیو گوسائی بات کا, पूर्व जन्म में यह हरि कथा और माता के उदर में वेदव्यास महाराज से पाठ किया था सब कुछ। सुखदेव गोस्वामी पास अभी वो दो नहीं सोचना था, दो का एक कर लीजिए माइंड में, अन्य तो प्रश्न करेगा उनमें से वो या वो श्रवण किया हाथ ऊपर करेंगे। यहां जो बात बताई जा रही है अब ये कथा बताई जा रही है दोनों की, जो भी हो कहीं से भी हो लेकिन एकत्रित बात बताई जा रही है। विविध थे दोनों, वो माता के घर में, लेकिन वो कल्प भेद के कारण लिखा गया है उसको कह करके वो तो मिटा दिया बात को, अभी उनकी स्थिति बता रहे हैं। अब इसमें ये हो जाएगा कि किसी को बोला मग लाओ तो ये 100 का नोट का लाऊं कि ये 100 का नोट का लाऊं, ये प्रश्न मत कीजिए कि किस 100 के नोट का मग लाया जाए, मूंग लाया जाए, साफ हो गया कल्प भेद के टाइम ही साफ हो गया सब कुछ। अब कहते हैं तो किट वत्स पर्यटन महिम इति, प्रभु राज का क्या अर्थ है बोले कीट वत्स, एक कीट माने एक तितली इत्यादि एक जगह वो भ्रमण करती है, उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद भ्रमण करते बोले इति वाक्यात समाधिर उत्थिता के चिद्दष्ट प्रार्थितो निवर्धनेन। कहते हैं वाक्यात समाधिर उत्थित के चिद्दष्ट, यहां समझना चाहिए कि कभी कभी वो समाधि से बाहर आकर के दर्शन करते थे। सुखदेव गोस्वामी पाद जब बैठे थे समाधि होकर के लोग अंतर गया अंदर, ये जो आचार्य लोग टीका लिख रहे हैं वो ऐसे नहीं लिख रहे हैं, और उनके बाद में वो भागवतम सीखे, उनके बाद में प्रवचन किया उन्होंने, उनसे पहले कोई प्रवचन का बात नहीं है, बाद में भागवतम का शिक्षा प्राप्त किया, ये अर्थ इससे ध्वनित होता है। अतः कहते हैं स्थैर्य आदि नाम वचन सदाचार ने न तत्प्रियतम नास्ति आह, तो इसके लिए वो कहते हैं दूसरा पाठ ले लिया, तो कहते इसी के बगैर वो कथा कैसे कर सकते थे, क्योंकि कथा अष्ट गुणा नाम उन आठ गुण से भरपूर कथा है भगवान का, उन गुणों का वर्णन करना होगा, केवल आत्मा में रमण करने वाला व्यक्ति इसको कैसे कर सकता है। अब तो कहते हैं प्रार्थितो निर्वदन कथम कथयस्ति न मंतव्यम, उन्होंने प्रार्थना किया वेदव्यास महाराज को कि मैं कथा करूंगा, उन कथा सीखे और उनके बाद में कथा का पाठ किए। तो इसी प्रकार ये जो यहां जो सुख है उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये सुख जो है वो सुख एक निर्मित सुख है, ये दो सुख का जो कथा चला ये एक तृतीय सुख है, एक आचार्य ये भी लिख रहे हैं जैसे गिरिराज जी इसको लिखे ये तृतीय सुख निर्माण हम ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने। तो छाया सुख जो प्रकटित हुआ सुखदेव गोस्वामी पाद के द्वारा वो भविष्य अपनी जानकारी कि मैं भागवतम का वक्ता हूं, क्योंकि आत्मानाम मुनिगण को सब कुछ मालूम होता, वो पहले से राधा रानी का तोता था, सब कुछ थे वो जानता था, अपने भविष्य को भी आगे जानते थे कि मुझे पाठ करना है, इसी वेदव्यास महाराज को निर्मित करके छाया सुख दे दिया, तसल्ली को प्राप्त हो उनके बाद में तब तक मैं आऊंगा ग्रंथ सीखने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अब प्रश्न बहुत उठेंगे लेकिन हो सकता है कि इसमें समाधान नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि कई कथाएं जहां पर अनेक ग्रंथों से चलती है उसमें समाधान खोजने में देर लगेगा, یہ نہیں کہ ایک سیکنڈ میں, کیوں میں تو وکت نہیں ہوں نہ تو آتما آرام ہوں, دیکھ کر کے بولنے والا ہوں, جو کچھ بھی ہے ادھر سامنے دیکھتا ہوں اسی کو بولتا ہوں, تو تتکال جواب نہیں ملے گا. پھر بھی اگر کسی کے پاس کوئی پرشن ہے تو رکھ سکتے ہیں.
تین شوک جو ہے, ایک تو ویتیکا کے شوک جو یہاں پر بات ہوئی, ایک کرتیکا کے شوک جو ویدر کی پرشن ہے, تیسرا چھایا سے کون سا شوک؟
یہ چھایا شوک, یہی تو چھایا شوک جو نرمان کیا سکھدیو گوسوامی پاد نے نرمت کر کے پتا جی کو دیا. دیکھیے پربھوپاد جی کیا لکھ رہے تاتپر میں ان کو جانیے. پربھوپاد جی لکھ رہے ہیں کہ دیکھو سکھدیو گوسوامی کا پیچھا کرنے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ اسے اس شلوک میں ورنت سکھ کنیا اسی نقلی سکھ کی کنیا تھی کہ سکھدیو گوسوامی پاد نے نرمت کر کے اس سکھ کو دیا سمپرد ان کو دیا گیا. اور یہ گردھر لال جی لکھ رہے ہیں کہ آپ تیسرا نرمان کیوں کر رہے ہیں, یہ اس کے ورودھ لکھ رہے ہیں. وہ بول رہے ہیں کہ جب یہ سکھ یہاں ہے جابالی کی کنیا کے وتیکا کے گربھ سے تو آپ تیسرا سکھ کیوں نرمت کر رہے ہیں, یہ لکھ رہے ہیں. لیکن یہاں آچاریہ جی لکھتے ہیں یدپی شاستروں سے میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا, لیکن شیل پربھوپاد مہاراج کو پرم وشواس ہے کہ جو وہ لکھے ہیں تو سن نشچت مل جائے گا کھوجنے سے کیسے وہ نرمت کیا. اور نہ کیول یہ تو کیول ڈیٹو کاپی کیا ہے بشنا چکری ٹھاکر کا, چھایا نرمت سکھ نرمت چھایا اس کا ارتھ ہمارے آچاریہ سمت ہے, شیل پربھوپاد ان کا وانی بولتے ہیں, ان کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. نہیں نہیں وہ چھایا سکھ کا بعد میں ورنن آتا ہے کہ وہ چھایا سکھ دکھائی پڑے تھے راجسو یج میں ورنن ہے وہاں چھایا سکھ آئے تھے. برہم میں لین
ہوئے وہ
چھایا سکھ؟ نہ 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 برہم میں بھی لین ہوا ہی نہیں کوئی سکھ, چونکہ یہ مہامونی کے روپ میں
سمادھی میں جو سیت ہوئے
وہ سکھدیو کیوں آئیں گے بعد میں, اس میں ان کا جو ورنن ہے. اب دوسرا ورنن ہے ان کے بعد میں جو کتھا ہوا دوسرا کتھا, ایک منٹ دماغ سے میرا دماغ اتنا نہیں ہے آپ لوگ جیسا تجم بوڑھا ہو گیا. اچھا وہ دوبارہ دکھائی پڑے تھے ان کے بعد میں دوبارہ جب کتھا ہوئی تو اس کتھا میں چھایا سکھ بیٹھے ہوئے تھے جب دندکاری کو بھیجنے کے لیے گوکل نے کتھا کیا اس میں بھی ان کا ورنن ہے چھایا سکھ کا. لیکن یہ اسپشٹ لکھا ہے چھایا سکھ وہاں پر سکھ کا ورنن ہے, وہ سکھدیو گزان پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے یہ چھایا سکھ تھا. دھرم پردان کے انترگت جو کتھا آتی ہے وہاں سکھدیو, اچھا وہاں بھی سکھدیو جو آئے تھے وہ یہ سکھدیو نہیں ہے, لیکن یہ چھایا سکھ یہ دو جگہ میں ان کے بعد میں بھی ان کا ورنن پایا جاتا ہے. اور کوئی جگیاسا؟ اب تم دوسرا مت کرنا. اور کوئی جگیاسا؟ وہ بھگوان کی کرپا سے اس اوستھا کو پراپت ہو گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ بھگوان کو ایک ایسا وہ وکتا چاہتے تھے جیسا شروتا ہے ان کو سمجھ, کیونکہ شریمد بھاگوتم کو دنیا میں لانا ہے نا. ارے وہ نہیں ڈالے ہوتے تھے تو شروع سے چالو کر دیا ہوتا تھا, اس کی وکتا کو کیسے دکھائیں گے جگت کے سامنے ان کی مہان کہ یہ کس کے ہاتھ میں یہ گرنتھ جا رہا ہے, کون اس کا پروچن کرے گا؟ ایک آتمارام منی ان کا پروچن کرے گا, کیونکہ اتم بھوت گنو ہری ہی, ہری میں ایسا گن ہے وہ کیسے دکھے گا؟ تو سوئم ان کے اداہرن سے سکھدیو گوسوامی پاد کے اداہرن سے یہ بتایا گیا ہے کہ بھاگوتی گاتھا ایسے آتمارام منی گنوں کے لیے بھی آکرشٹ, ان کے چیت کو بھی آکرشٹ کرنے والی ہے. اب سمجھے نا کچھ پرپس ہوتا ہے بھگوان کا کچھ بات کے لیے. ٹھیک ہے گندراج سمر بھاگوتم کی جے, شیل پربھوپاد کی جے, سچ سرادا گرداری بھگوان کی جے. श्री प्रभुपाद की जय। जय गौर हरि वंदने अंशाकल पतरुव कृपा सिंधु भयवच्च हरि तनम पावन जो
जय।
बुढ़ा के कबूल की सारी।